ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल का क्लास हम रिवाइव करेंगे, रिवीजन, तो आप शेयर कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स।
बताया था कि जैसे कि जो सारे बिंदुओं का को के द्वारा हमें तीन चीजें पता चलती हैं, जो संबंध ज्ञान अभिधेय और तीन जो होता है कि हमारा संबंध क्या है, कि भगवान से हम कौन है, कृष्ण के कौन है और दास क्यों है, तो उसके बाद अभिधेय कि उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, हमें पता चलता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना चाहिए और प्रयोजन क्या है हमारा, उसका उद्देश्य क्या होता है।
चैतन्य महाप्रभु का जो पूरा टीचिंग है उन्होंने अपने 8 वर्सेस में देते हैं, और उसको कौन समझ सकता है जो जिसमें सीरियस डिजायर हो समझने के लिए और सर्व करने की इच्छा हो। और संबंध और अभिधेय और प्रयोजन के अलावा उन्होंने और दो ज्ञान दिए, सार्वभौम भट्टाचार्य को संबंध विचार जिसमें डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड ईश्वर उसके बारे में डिटेल है, एंड अभिधेय विचार जिसमें डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फोर्सेस जिसको उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती को दिया।
और ये तीन ज्ञान किसको किसको दिए थे, थ्री नॉलेजेस कौन कौन?
रूप गोस्वामी को दिया था,
रूप गोस्वामी को कौन सा ज्ञान?
अभिधेय
ज्ञान। और किसको?
संबंध ज्ञान सनातन
गोस्वामी। और
प्रयोजन
रामानंद आचार्य कौन कौन है तीनों ज्ञानों के, किस किस के? एक एक बोले ना तीनों। हाँ बोलिए, आचार्य और उनका नॉलेज कौन कौन सा ज्ञान?
रूप गोस्वामी जी का अभिधेय ज्ञान, संबंध ज्ञान सनातन गोस्वामी जी का, और अभिधेय अप्रयोजन ज्ञान रघुनाथ दास गोस्वामी जी का।
और क्या था
इसमें जो जो महाप्रभु की टीचिंग से जो सीरियसली करता है वो, यदि कोई बच्चा भी हो वो भी भगवत प्राप्त कर सकता है,
इस शिक्षा को समझ सकता है, इंट्रिकेसीज जो है सिद्धांत के फिलॉसफी के,
और हमें प्रे करना चाहिए कि ये हमें टीचिंग जो सुन रहे हैं वो
समझ में आए।
एक संबंध ज्ञान जो है हमें उनके आदिशाद देव जो है वो गोविंद देव वो है मदन मोहन जी।
हाँ
मदन मोहन जी है, तो मदन मोहन क्या है कि हम सारे लोग जो है वो काम के वशीभूत हैं, मतलब हम भोगने की इच्छा से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो काम के वशीभूत होते हैं, तो संबंध हमारा जो है वो इसीलिए हमारे जो अधिष्ठाता देव है वो है मदन मोहन जी, जिनसे हमें अटैचमेंट हो, मतलब मदन मोहन का नाम है मदन,
प्रार्थना करें। और आगे
सबसे पहला मतलब टीचिंग है कि जीव सभी योनियों में है, 84 लाख योनियों में है और पूरे ब्रह्मांड में है, जो अलग अलग बताए थे जल में और
तीन तरह के दो जीव के दो विभाग होते हैं, चल अचल, उसमें भी तीन विभाग हो जाते हैं, तिर्यक, जलचर, स्थलचर।
तिर्यक का मतलब नवचर। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे हमें उठाए के ले जा रहे हैं, इस चीज को स्थापित करने के लिए कि कृष्ण भक्त का पोजीशन क्या है, वो कितने महान है, या कृष्ण भक्त बनना बनने के लिए कितने सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने वो कहा, क्या कहा, कि ब्रह्मांड तो हजारों जीवों से भरा हुआ है। उसके लिए महाप्रभु ने वो बात बोली कि जो सारा संसार है वो इससे जीवों से व्याप्त है। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण। ब्रह्मांड में अनंत जीव है और उसमें भी 84 लाख योनियां हैं, और वो जीवों का साइज चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और 84 लाख योनियों के भी दो विभाजन है, वो कौन कौन से है, स्थावर और जंगम, यही दो ही भेद। तो स्थावर और जंगम ये दो भेद हैं, और स्थावर मीन्स जो एक स्थान में स्थित है, अचल है, और जो जंगम है वो क्या है, चल है, मूविंग है। तो चल के भी तीन विभाग उन्होंने बताए, तिर्यक, जलचर और स्थलचर, मतलब नवचर, जलचर और स्थलचर। और फिर चैतन्य महाप्रभु अभी इनमें इसके बारे में बता रहे हैं, अभी किसके बारे में हमें विभाजन कर रहे हैं, स्थलचर के, जो तीन विभाग हैं स्थावर के, स्थावर के ही है ना तीन विभाग, जंगम के हैं। तो उनमें भी तिर्यक जो नवचर है, जलचर और अभी स्थलचर के बारे में बता रहे कि इनमें भी श्रेष्ठ कौन है, स्थलचर है। और स्थलचर क्या क्या है, स्थलचरों में कौन कौन आता है, मनुष्य जाति है और पशु है, एनिमल्स है। तो महाप्रभु कहते तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, उनमें भी स्थलचरों में भी कौन अति अल्प है, मनुष्य जाति। तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बहुदशबर। तो महाप्रभु कहते हैं कि हजारों हजारों जीव हैं। अभी एक विलेज आप ले लो, किसी गांव में कितने जीव होते हैं मनुष्यों के अलावा, एंट्स हैं, कितने एंट्स हैं एक गांव में, जितने जीव हैं पूरे वर्ल्ड में उतने ह्यूमन नहीं होंगे। और हम कह रहे कि जनसंख्या बढ़ रही है, कंट्रोल हम दो हमारे दो, अभी हम दो हमारे एक, हम दो और हम ही दो रह जाएंगे आगे ऐसे हो जाएगा तो फिर भी इतना ये है, जो जीवों की संख्या है वो एक विलेज में इतने जीव है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जल में है, फिर जो सीड आदि हैं वो भी तो जीव हैं। हर एक सीड में भगवान ने कितने जीव बना के रखे हैं, एक एक कोई भी बीज है, मस्टर्ड सीड है, उससे भी कई सीड उत्पन्न हो जाते हैं, है कि नहीं, कितने हजारों जीव। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि उनमें भी जो अधिक है वो कौन से जीव है, मनुष्य, जो उनमें भी महत्वपूर्ण है, जो स्थावर में भी, स्थावर ने जंगम में भी, जो जलचर, थलचर, नवचर। तो थलचरों में उनमें अति अल्प है मनुष्य जाति, और उन मनुष्य जातियों में भी अधिक कौन से लोग हैं, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर, उनमें तो म्लेच्छ है, पुलिंद आदि है, बौद्ध है, शबर वगैरह है, तो ये है उनमें। तो म्लेच्छ लोग कौन है, म्लेच्छ और यवन, तार मध्य म्लेच्छ यवन, तो म्लेच्छा कौन है? प्रभुपाद कहते हैं द संस्कृत वर्ड यवना एंड म्लेच्छा अप्लाई टू दोज हु डू नॉट फॉलो द वैदिक प्रिंसिपल। तभी महाप्रभु बहुत बुद्धिमानी से कैटेगराइज कर रहे हैं मनुष्यों को। इसमें ये बता रहे कि मनुष्यों में भी क्या है, दो प्रकार के हैं। एक क्या है, जो वैदिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, और एक है वैदिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वैदिक प्रिंसिपल क्या है वो आगे बताएंगे। तो ये जो म्लेच्छा या यवन है वो लोग हैं। म्लेच्छा का मतलब है अनक्लीन। हाँ प्रभुपाद, अनक्लीन विदाउट एनी वैदिक कल्चर प्रभुपाद लिखते हैं। हाँ, दे आर कॉल्ड म्लेच्छा। प्रभुपाद कहते कि ऐसे नहीं कि विदेशों में ही म्लेच्छा है, कहते भारत में भी म्लेच्छा है। हाँ, हम सोच सकते कि विदेशों में ही म्लेच्छ लोग है, यवन है। तो म्लेच्छ वो है जो, म्लेच्छ या यवन वो है जो मीट ईटर्स हैं, और स्पेशली कौन सा मीट खाते हैं, काउ फ्लेश ईटर्स। इसलिए भगवान अब प्रकट होने वाले हैं कल के रूप में। म्लेच्छ निवह निधने कलयसि करवालम धूमकेतु मिव किमपि करालम केशव धृता कल की शरीरा जय जगदीश हरे। तो म्लेच्छ निवह निधने, म्लेच्छों को वो मारने वाले हैं, उनका विनाश करने वाले हैं। तो ऐसे जो म्लेच्छ है वो बहुत अधिक संख्या में है जो वैदिक कल्चर को नहीं फॉलो करते। और यवनास क्या है, यवन का सीधा सीधा अर्थ है, मुस्लिम्स को यवन कहा जाता है, जो मीट खाने में एक्सपर्ट हैं। और भारत में तो अभी यवनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जिस प्रकार से मुस्लिम के टीचिंग्स को जो फॉलो नहीं करता उसको काफिर कहा जाता है ना, और क्रिश्चियनिटी में क्या कहा जाता है, हेथन्स ऐसे कुछ का हिडन्स। तो उसी प्रकार से जो वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं करता उनको यवन या म्लेच्छ कहा गया है। पुलिंद कौन है, जिनका लाइफ अनरेगुलेटेड है। पुलिंद खसादया ऐसे काफी वर्णन आया है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये पुलिंद इसमें भी है, भारत में भी, ये ग्रीक फैमिली से हैं, ग्रीक लो इसे ग्रीक रेस से हैं, नॉन वैदिक लोग हैं पुलिंदा। और आज भी भारत में कुछ स्थानों में पुलिंद जाति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मनुष्य जाति है वो अति अल्प है, लेकिन उसमें भी म्लेच्छ है, पुलिंद है, बौद्ध है। बौद्ध कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बौद्ध, बुद्ध के जो अनुयायी हैं। और बुद्ध के अनुयायियों का फिलोसफी क्या है, वेद न मानिया बुद्ध हैल नास्तिक। बुद्ध कौन है, नास्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता वो व्यक्ति नास्तिक है। वेद शास्त्र नास्तिक के बाद बौद्ध के अधिक, और उससे भी अधिक नास्तिक कौन है, जो मायावादी है, शंकराचार्य के अनुयायी। वेदों को मानते हुए भी वो हिडन नास्तिकवाद को फैला रहे हैं, इसलिए बौद्धों से ज्यादा बड़े नास्तिक ये मायावादी लोग हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं, और जो वैदिक वेदों का गलत रूप से अनुसरण करते हैं, हिंसा आदि जिसकी प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी, तो उसको रोकने के लिए बुद्ध के रूप में आते हैं भगवान, और निर्वाण फिलोसफी को प्रकट करते हैं। तो निर्वाण फिलोसफी क्या है कि शरीर के बाद क्या है, शून्यवाद। प्रभुपाद ने उसको नाम दिया शून्यवाद। इस प्रकार से वैदिक प्रिंसिपल को फॉलो न करने वाले म्लेच्छ है, यवनाज है, बौद्धाज है, और चैतन्य महाप्रभु कहते शबर। शबर क्या है, जो लोएस्ट ऑफ द मैन, द हंटर क्लास, प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है कि जो नीच जाति के हैं या लोएस्ट है ऐसे लोग। लॉर्ड बुद्धा डिफाइन वैदिक अथॉरिटी बट हिज मिशन वाज टू स्टॉप एनिमल किलिंग। इन द वेदास देयर आर रिकमेंडेशंस फॉर एनिमल सैक्रिफाइस एंड देयरफॉर टू प्रिवेंट द किलिंग ऑफ एनिमल्स लॉर्ड बुद्धा रिजेक्टेड द वेदास। तो उनका गोल था अहिंसा का प्रचार करना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु डिफाइन कर रहे हैं कि जीवों में भी मनुष्य अति अल्प हैं और उनमें भी यमलच्छ पुलिन बौद्ध और शबर आदि हैं। वेदनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गने। तो वेद निष्ठा मध्य, अभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा वेद निष्ठ, हाँ मतलब जो वेदों को मानते हैं, जिनके वेदा में वेदों में निष्ठा है, वैदिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो उनको वेद निष्ठ कहा गया है, जो फॉलोअर ऑफ वेदास। तो वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुख्य माने, तो वेद का मतलब क्या है? नॉलेज, जानना या ज्ञान। तो ज्ञान क्या? ज्ञान भगवान और जीव में क्या संबंध है, और उसी को ही उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना, उसको स्थापित करने के लिए उसको रिलीजन कहा गया है। श्रील प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द वैदिक प्रिंसिपल इज कॉल्ड रिलीजन। उसके अनुसार कार्य करना, उस वैदिक ज्ञान के अनुसार, उसको धर्म कहा गया है। और धर्म क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की वाणी को पालन करना मीन्स धर्म है। और परम धर्म क्या है? सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति राधोक्षजे। कि परम धर्म वो है कि सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति राधोक्षजे, भगवान के प्रति भक्ति होना, ये परम धर्म है। और वो कैसे भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो अहेतु की, बिना किसी हेतु के। इस प्रकार से जो वेद है, नॉलेज है, वो ये परम धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते ऐसे वेद निष्ठ जो वेदों के फॉलोवर्स है, वेदों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनमें से आधे लोग क्या मानते हैं? वेद मुख्य माने, मतलब मुख से मान रहे हैं। प्रभुपाद कहते मुख्य माने का मतलब है हाँ मैं आपका सेवक हूँ, यस सेवक, प्रभु जी सेवक हूँ। और जब सेवा देते हो तो नहीं अभी मैं प्रभु हूँ, ऐसे हैं। इसको क्या कहते हैं? वेद मुख्य माने। मुख्य माने मीन्स लिप सर्विस है ना, एक दो सर्विस है, एक लिप से सर्विस करते हैं हम। हाँ जब सेवा देने का बात आती है तो हम फिर दास भावना को भूल जाते हैं, तो इसको लिप सर्विस कहा गया है। तो जो वेदों को तो मानते हैं क्योंकि हम भक्त हैं। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं सो कॉल्ड फॉलोअर्स ऑफ वैदिक प्रिंसिपल सिंपली एक्सेप्ट द वेदास फॉर्मरली बट दे एक्ट अगेंस्ट वैदिक प्रिंसिपल। दिस इज सिम्प्टोमेटिक ऑफ दिस एज ऑफ कली। पीपल क्लेम टू फॉलो ए सर्टन टाइप ऑफ रिलीजन सेइंग फॉर्मरली आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम क्रिश्चियन, आई एम दिस एंड आई एम दैट। तो इस प्रकार से लोग कहते हैं, लेकिन जैसे रिलीजन को, उनके धर्म के सिद्धांत को या टीचिंग को फॉलो करने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक सेंटेंस हमेशा, क्रिश्चियन का बात आता था तो हमेशा एक ही वाक्य बोलते थे थाउ शाल नॉट किल। क्यों? क्योंकि वो कहते हम क्रिश्चियन हैं, जीसस के फॉलोअर हैं, तो ये क्या है? लिप सर्विस है। लेकिन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते। तो वैसे ही हम कहेंगे कि हम भक्त हैं, लेकिन जो भक्त निष्क्रिय नहीं होता, भक्त का मतलब क्या है? सक्रिय एक्टिविटी में, भगवत सेवा में सक्रिय होता है। इसलिए वो पांच जो आगे आएंगे डेफिनेशन शुद्ध भक्ति के, उसमें ये भी एक है कि भक्ति का मतलब है सक्रिय एक्टिविटी, निष्क्रिय नहीं। तो ऐसे लिप सर्विस जो मायावादी है वो भी लिप सर्विस करते रहते हैं, और जो वैदिक रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक सिद्धांत का मेन जो प्रिंसिपल है वो यही है कि भगवान के शरण ग्रहण करना, और इसलिए हम कहते हैं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ। लेकिन प्रेम करने के बाद जब सेवा की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुख्य माने, मुख से मान रहे बस। मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई कहे ना मैं आपकी पत्नी हूँ, और वो बेचारा ऑफिस से आता है, पूरे दिन बॉस की गालियां खाते परेशान होके, और फिर आता है उसको लगता है कि अभी पत्नी थोड़ा कुछ गरम गरम परोटे बना के रखे होंगे, मेरे कपड़ों को प्रेस किया होगा, कई चीजें, और वो मैडम बैठी है अपना चेयर डाल के उधर दरवाजे में, जैसे आती है आई लव यू बेचारे का पूरा पसीना छूट रहा है, उसको भूख लग रही है, उसके लिए कुछ है नहीं, और कहते कुछ है नहीं, आई लव यू उसको खाने के लिए चाहिए, उसके कपड़े चाहिए, गर्म पानी स्नान के लिए चाहिए, हाँ तो इसको क्या कहेंगे, लिप सर्विस। हाँ तो लिप सर्विस से काम नहीं होगा, तो ऐसे वेदों को तो मान रहे हम, बहुत कृष्ण के फॉलोवर है हम, प्रभुपाद के फॉलोवर, जय प्रभुपाद गाते ना जोर जोर से, प्रभुपाद ने कहा डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, नहीं हम बस फॉलोवर है प्रभुपाद के, इसको क्या कहेंगे, लिप सर्विस। तो नाम का तो बहुत उच्चारण करेंगे, गुरु पूजा में जोर से नाचेंगे, कैसे नाचेंगे, दोनों हाथ कूद कूद के मृदंग बजा बजा के, बम्पर से कान के पर्दे फट जाएंगे, जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, और प्रभुपाद ने कहा इफ यू वांट टू प्लेज मी, हाँ तो ये सब क्या है, ये सब क्या कहेंगे हम यदि नहीं होता, इसको कहते हैं लिप सर्विस। इस प्रकार से वेद निष्ठा, हाँ वेदों के फॉलोवर हैं हम, लेकिन वेद क्या कहते हैं उसकी जब बात आती है तो नहीं, फिर ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं वो धीरे धीरे वो क्या करते, फिर वेद निषिद्ध पाप करे, वेदों को फॉलोवर है हम लेकिन लिप सर्विस करते हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म में नहीं रहेंगे, वो क्या करने लगेंगे, वेद निषिद्ध जो वेदों ने निषिद्ध किया है ये नहीं करना चाहिए, वो पाप करेंगे। तो प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने कहा ये करो, तो केवल लिप सर्विस करेंगे, तो नेचुरली जो प्रभुपाद ने नहीं करने के लिए कहा वो हम क्या करेंगे, प्रभुपाद निषिद्ध पाप करें, हाँ वो पाप में हम लग जाएंगे, धर्म नाही गने, और धर्म को जो सिद्धांत है उसको हम नहीं स्वीकारेंगे। हाँ तो इसी प्रकार से ये जो लिप सर्विस है वो करने से आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ द एक्टिविटीज ऑफ द फेथलेस एंड द लिप सर्वर्स इवेंचुअली डिग्रेड द पॉइंट वेयर दे फुल्ली रिसेंबल द एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स। तो यदि इस लिप सर्विस में ही रहेंगे तो शास्त्र कहते हैं कि हम और पतन की ओर जाएंगे। हाँ और धीरे धीरे जो पशु वृत्ति के कार्य हैं, पशु से भी नीच कार्य हैं, वो करने लगेंगे, और हमारा जो चेतना है वो पूरी तरह से कवर्ड हो जाएगा अपनी भौतिक इच्छाओं के द्वारा, और फिर उस व्यक्ति का पतन होगा, कहा नीचे योनियों में अलग अलग, और फिर 84 लक्ष योनि सदा फिरे, फिर उन योनियों में उसको घूमना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये चीज को स्थापित कर रहे हैं कि जो वैदिक फिलोसफी, वेदों के जो फॉलोवर है उनमें भी जो आधे हैं वो क्या करते हैं, लिप सर्विस करते हैं, और लिप सर्विस का मतलब है वेदों के जो निषिद्ध कार्य है उनको करने लगते हैं, और धर्म के सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते। धर्माचारी मध्य बहुत कर्म निष्ठ, अभी जो वेद निष्ठ थे हाथ तो चले गए लिप सर्विस से, जो वेद निष्ठ है, वेद निष्ठ में भी कितने हैं जिनको धर्माचारी कहा गया है, अमंग पर्सन हु एक्चुअली फॉलो द वैदिक प्रिंसिपल्स और रिलीजियस सिस्टम। तो जो धर्मनिष्ठ है उनको ही अगले श्लोक में क्या कहा गया है, धर्माचारी, मतलब धर्म के वेदों को फॉलो करते हैं, एक्टिंग में लाया है, लेकिन वो क्या कहेंगे उसको, उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। तो उनमें भी क्या है, धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, ये थोड़ा ये है क्या, इंट्रिकेसिस है, इन चीज को सिक्वेंसली समझ जाते हैं तो हम अनुभव करेंगे कि कृष्ण डिवोटी का कितना ग्लोरी है। तो धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। तो ऐसे धर्माचारी है हाँ जो फॉलो करते हैं जो धर्म के जो प्रिंसिपल हैं, हाँ उनमें बहुत कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ का मतलब क्या है, वर्क इज वर्शिप, ब्रॉड डेफिनेशन कर्मनिष्ठ का क्या है, कर्म ही पूजा है, जहां जहां जाओ, जैसे हम जाते आजकल बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो गीता रखो, गीता तो जानते हैं हम बचपन से जानते, कर्म करते जाओ, गधा बनते जाओ मुझे तो एक ही चीज याद आती, जैसे उधर कर्म करते जाओ तो गधा बनते जाओ भगवद गीता ये नहीं सिखाती। हाँ तो कर्मनिष्ठ, हाँ कर्मनिष्ठ वो है कि वर्क इज वर्शिप, हाँ तो मतलब बॉडीली प्लेटफॉर्म में जो कर्मनिष्ठ होते हैं, और तो ये कर्मनिष्ठों की जो व्याख्या है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ऐसे कर्मनिष्ठ लोग जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दूर भाग रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनके ऊपर कृपा करने के लिए संन्यास लिया। मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण, तो वो दिया है कौन कौन भाग रहे थे, जो भक्ति से भागते दूर, मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण निंदक पाषंडी जत पड़ू या अधम, जो मायावादी है, जो कर्मनिष्ठ है, कुतार्किक तर्कनिष्ठ है, और जो निंदक है, निंदा करने वाले, पाषंडी है, ढोंगी, और दूसरे कौन से हैं, पढ़ू या अधम, और जो लो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये सारे गुण। सेई सब महादक्ष धैया पलायला, सेई वन्याता सबारे छुए तिनारिला। इस प्रकार से ये जो कर्मनिष्ठ लोग हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज उनके बारे में कहते हैं, कर्मनिष्ठों के बारे में, कि जो लोग अपने कार्य के द्वारा जो फल प्राप्त होता है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, जो भी उनका पुण्य कार्य आदि है या पायस एक्टिविटी है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उनको कर्मनिष्ठ कहा गया है। और ऐसे जो फॉलोवर है वैदिक प्रिंसिपल के, सम फॉलोअर्स ऑफ वैदिक प्रिंसिपल ऑफर एवरीथिंग टू द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड डू नॉट एस्पायर टू एंजॉय द रिजल्ट ऑफ देयर पायस एक्शंस, दीज आर ऑल्सो कंसिडर अमंग द कर्मनिष्ठास। Sometimes we see pious man earn money with great hardship and then spend the money for some pious cause by opening public charity schools and hospitals. तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि जो कुछ पुण्यवान लोग होते हैं वो बहुत धन अर्जन करते हैं, और धन के द्वारा क्या क्या करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, कंबल बांटना, फूड खिलाना, स्कूल ओपन करना, हॉस्पिटल चलाना। तो ये क्यों, क्यों इनके पीछे वो चाहते हैं रिजल्ट को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसे कर्मनिष्ठ हैं, इसलिए ज्यादातर लोग ऐसे हैं। और वेदों के जो भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि वेदों के जो अच्छे अच्छे लगने वाले शब्द हैं, हाँ उनके कारण लोग ज्यादातर कर्मनिष्ठ बन रहे हैं। तो इस प्रकार से कर्मनिष्ठ को फ्रूटिव वर्कर्स कह सकते हैं, फ्रूटिव वर्कर्स सकाम कर्मी जिन्हें कहते हैं। धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, और उनमें भी कर्म कोटि कर्मनिष्ठ में कौन श्रेष्ठ है, एक ज्ञानी श्रेष्ठ है। तो ज्ञानी कौन है, तो ज्ञानी का वर्णन करते हैं, ज्ञानी व्यक्ति वो है जो मैं यह शरीर नहीं हूं, इस भावना को, या सब चीजें टेम्पररी है, या फिर शिवोहम, मैं भी वही हूं, तो वो मर्ज होना चाहता है जो ज्ञानी है। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, जो ये फ्रूटिव एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहता है, और जिसमें यही भावना रहती है कि ये जो कार्य से मैं बंद जाऊंगा तो सारे एक्टिविटीज में वो साइलेंट बना रहता है, भौतिक कार्य हर चीज में वो क्या करता है, सोचता है ये सब बंधन का कारण है, किसी चीज से वो अलिप्त रहता है, तो भौतिक कार्यों के प्रति एक प्रकार से वो साइलेंट होता है, और वो सब वो मर्ज होना चाहता है भगवान के साथ। तो श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कि जो ज्ञानी सोचता है कि मैंने, हाँ पहले वो कर्मनिष्ठ होता है, वो कहता है मैंने बहुत सारे कार्य करके शरीर का सुख अनुभव करने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या हुआ, निष्फल हुआ। तो वो फिर आगे चाहता है कि वो सोचता है कि मैं ये शरीर हूं या समथिंग आल्सो, हाँ शरीर से कुछ अलग हो। तो वो फिर ये धीरे धीरे पता चलता है वैदिक इंजेक्शन, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ, ब्रह्म हूं मैं। हाँ तो फिर धीरे धीरे जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, और शारीरिक जो कंसेप्शन ऑफ लाइफ है देहात्म बुद्धि से वो अलग होना चाहता है। और फिर धीरे धीरे वो सोचता है कि मुझे क्या करना है, हाँ जो ब्रह्म है उसमें लीन होना है, इसलिए लिखते हैं ना ब्रह्म लीन। आजकल हजारों साधु ब्रह्मलीन, 1008 से 108 से नहीं उनका पूर्ति होता, 1008 फिर पता नहीं कितने आठ लिखते हैं, हाँ इतने वो ब्रह्मलीन है, इतनी बार ब्रह्म में लीन हो गए हैं। तो ऐसे जो ज्ञानीज हैं, हाँ ये दोनों लोग, एक ज्ञानी श्रेष्ठ, और आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। तो ऐसे कोटि कोटि ज्ञानी लोगों में एक जन क्या है, मुक्त है। हाँ मुक्त का मतलब है जो बॉडी से अटैच नहीं है, सरल भाषा में कहा जाए। हाँ तो क्यों मुक्त श्रेष्ठ क्यों है इन दोनों में, क्योंकि दोनों में क्या है, स्वार्थ है। हाँ जो कर्मनिष्ठ है वो भी अपने रिजल्ट को भोगना चाहता है, और जो ज्ञानी है वो भी क्या इच्छा रखता है, मर्ज होने की। तो ये दोनों क्या अपने स्वार्थ हैं। हाँ तो आजकल सो कॉल्ड लोग अपना दिखावा करते होंगे, सैफ्रन आदि धारण करके घूमते होंगे कि हम मुक्त हो गए हैं, मतलब पत्नी से मुक्त होके बाहर निकल गए होंगे घर से। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लोग धर्मनिष्ठ ये है, कर्मनिष्ठ लोग हैं ज्यादातर, वो ज्ञानी भी नहीं है और वो भक्त भी नहीं है। ज्ञानी का भी एक बहुत बड़ा स्तर है, आजकल ज्ञानी प्राप्त करना बहुत सरल है, वो मैं भी नाम लिखते होंगे अपने। तो आज के संसार में सारे लोग यही हैं, ज्यादातर कर्मनिष्ठ हैं। कोटि ज्ञानी मध्य, अभी हमने क्या देखा, कोटि ज्ञानी मध्य हय एक जन मुक्त, कोटि ज्ञानी मध्य हय एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में एक व्यक्ति मुक्त है, और ऐसे करोड़ों करोड़ों मुक्तों में दुर्लभ कृष्ण भक्त। ऐसे मुक्तानाम अपि सिद्धानाम वासुदेव परायण, ऐसे हजारों हजारों मुक्तों में एक व्यक्ति वासुदेव के परायण होता है, वो बहुत दुर्लभ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कोटि जो मुक्त लोग हैं उनमें एक दुर्लभ है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में मनुष्यानाम सहस्रेशु कच्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कच्चिन माम व्यक्ति तत्वता। तो इस प्रकार से जो सिद्ध लोग है वो ये जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, रियलाइज करते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं वो जान पाते, इसलिए वो सिद्ध हो सकते हैं या फिर मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जो कृष्ण के जो डिवोटीज हैं वो सब में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहते हैं कि कितना दुर्लभ है एक कृष्ण भक्त होना। वे चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकली अशांत। तो जो कृष्ण का भक्त है वो क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि कोई कामना नहीं है, भौतिक कामना से वो भरा हुआ नहीं है, तो वो भक्त है। तो भक्त क्या चाहता है, वो बस एक ही डिजायर होती है, कृष्ण की सेवा करना। और जो कर्मनिष्ठ है वो क्या चाहता है, अपने कर्मों के द्वारा फलों को एंजॉय करना चाहता है, और जो ज्ञानी है वो क्या चाहता है, मर्ज होना चाहता है, और जो सिद्धि है योगीज है वो क्या चाहते हैं, सिद्धियां चाहते हैं। इसी कारण से ये सब लोग अशांत है, भुक्ति मुक्ति भुक्ति ये चाहता है वो कर्मी कर्मनिष्ठ। मुक्ति कौन चाहता है, ज्ञानी। सिद्धि कौन चाहता है, योगी। ये सब कामी लोग हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो वास्तव में डिजायरलेस होता है। डिजायरलेस का मतलब है, भगवत गीता में एक सेकंड चैप्टर में वर्णन आता है, जब भगवान कहते हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रभुपाद लिखते हैं To become desireless means not to desire anything for sense gratification. In other words, desire for becoming Krishna conscious is actually desirelessness. तो हमें जो भक्त है वो डिजायर से रहित होता है, निष्काम। निष्काम का मतलब क्या है, एक्चुअली डिजायरलेस, प्रभुपाद लिखते हैं। तो डिजायरलेस होना मतलब क्या है, पत्थर होना नहीं। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि हम इच्छा रहित हो जाएंगे तो उसका मतलब हम स्टोन है, क्योंकि उसकी कोई डिजायर होती नहीं। लेकिन डिजायर क्या हो, केवल कृष्ण कॉन्शियस होना, यही एक डिजायर रखे तो वो व्यक्ति डिजायरलेसनेस है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद और एक जगह कहते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य। ये भी एक अलग एस्पेक्ट है डिजायरलेस होने का, कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है कि कृष्ण की इच्छाओं को कैसे पूर्ति करे, कृष्ण को कैसे और अधिक प्रसन्न करे। क्योंकि हम अपनी इच्छा को रोक नहीं सकते या स्टॉप नहीं कर सकते, और ये मूर्खता है कि हमें डिजायरलेस होना है। तो डिजायरलेस का मतलब है मृत व्यक्ति, जिसको कोई डिजायर नहीं होती, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं उनको शुद्ध करना, यही है वास्तव में डिजायरलेस होना। प्रभुपाद ने एक जगह कह रहे थे कि आपने यदि आपके अंदर इच्छा है कि कार ड्राइव करने की इच्छा है तो अच्छा है, तो प्रीचिंग के लिए आप जाओ कार ड्राइव करते हुए। यदि आपको कार ड्राइव करने की इच्छा है, आपको नाना व्यंजन खाने की इच्छा हो रही है, तो क्या करो, भोग लगाओ पराठे आदि और ऑफर करो ठंड में गरम गरम और फिर खाओ। इसको क्या कहते हैं, डिजायरलेस। अब डिजायरलेस हो तो इस प्रकार से जो भक्त है निष्काम निष्काम, इसी कारण से वो हमेशा शांत। ऐसे नहीं कि अभी शांत है ठीक है रजे उड़ के बैठता हूं मैं शांत हूँ भक्त हूँ, नहीं। शांत का मतलब है एक्टिव होता है वो, किस चीज में, कृष्ण की इच्छा पूर्ति करने में वह एक्टिव होता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये चीज का वर्णन करते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम आतेव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकलिया शांत। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उस श्लोक को कोट करते हैं, मुक्तानपि सिद्धानाम नारायण परायणा सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटीश्वपि महामुने। छठे स्कंद का ये श्लोक परीक्षित महाराज ने वृत्रासुर के लिए कहा था, जिसमें वो यही कहते हैं कि हजारों हजारों मुक्तों में या सिद्ध लोगों में जो नारायण परायण है, कृष्ण के परायण है, उनसे आसक्त लोग हैं, वो बहुत क्या है, दुर्लभ है। तो इस प्रकार से आज हम थोड़ी देर के लिए यही चर्चा ये कि किस प्रकार से जो कृष्णा डिवोटीज है वो श्रेष्ठ है या टॉप मोस्ट उनकी जो स्थिति है, जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को वर्णन करते हैं, और फिर आगे चल के रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु और चीजें बताएंगे जिसका हम चर्चा कल कर सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील रूप गो